पृष्ठ संख्या 249 अध्याय 13 ऐतिहासिक स्पष्टीकरण तथा व्याख्या हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन। वर्तमान का आविर्भाव अतीत के गर्भ से हुआ है, यही नहीं बल्कि अतीत की आधार शिलाधार की वर्तमान आधार शिलाधार ही सॉरी अतीत की आधार शिला पर ही वर्तमान का निर्माण हुआ है। पी गार्डिनर के अनुसार वर्तमान के संदर्भ में अतीत की गवेषणा का अभिप्राय ही ऐतिहासिक स्पष्टीकरण है। यह एक गंभीर विचारणीय प्रश्न है कि क्या संपूर्ण वर्तमान के परिवेश में संपूर्ण अतीत का ऐतिहासिक स्पष्टीकरण संभव है। इस प्रकार की अवधारणा एक स्वप्न लोकीय कल्पना हो सकती है, यथातथ्य नहीं, क्योंकि किसी भी इतिहासकार के लिए इस प्रकार का ऐतिहासिक स्पष्टीकरण एक अत्यंत जटिल समस्या है। 18वीं तथा 19वीं सदी के अधिकांश दार्शनिकों ने इतिहास का सर्वाधिक अध्ययन परिकल्पनात्मक दार्शनिक दृष्टिकोण से किया है। हर्डर, कांट, हीगल तथा कार्ल मार्क्स के लिए इतिहास उनकी अभिरुचि का विषय बन गया। 20वीं सदी के अधिकांश दार्शनिकों का ध्यान इतिहास संबंधी अन्य समस्याओं की ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक था, क्योंकि इनके पूर्ववर्ती दार्शनिकों ने एक सुसंपन्न परंपरा छोड़ी थी। 20वीं सदी के विचारकों ने दार्शनिक परंपरा को अपने मौलिक विचारों द्वारा विस्तृत किया। इतिहास की समस्याओं के अंतर्गत ऐतिहासिक स्पष्टीकरण का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तत्वमीमांसा दर्शन के प्रख्यात विद्वान हेम्पेल, मार्टिन व्हाइट, अर्नेस्ट नागल, गैली, विलियम ड्रे, चार्ल्स फ्रैंकल, एलन डानगन, स्क्रीवियन, वॉल्स तथा मेंडेलबॉम ने ऐतिहासिक स्पष्टीकरण संबंधी मूलभूत समस्याओं पर अत्यधिक प्रकाश डाला है। इन्होंने अतीत संबंधी सभी सूक्ष्म तत्वों का उल्लेख किया है जिनका संबंध भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान तथा मानव शास्त्र से था। इस प्रकार समय, मानवीय सामाजिक व्यवहार, मानवीय इच्छा, विचार, योजना तथा मस्तिष्क प्रक्रिया का सूक्ष्म विवेचन मौलिक ढंग से किया गया। इस समस्याओं के विस्तृत व्याख्या में इन्होंने सामान्यीकरण जैसी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके समस्या को सरल तथा सुबोध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में इन तथ्यों का उल्लेख क्यों आवश्यक है, इसे कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। कॉन्स्टेंटाइन ने मिलवान पुल पर मैक्सेटियन को 28 अक्टूबर 312 ईस्वी में पराजित किया। इसमें समय तथा स्थान का संबंध भौतिक शास्त्र से है, पराजय ऐतिहासिक तथ्य है, अतः ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में भौतिक शास्त्र की विधि का प्रयोग आवश्यक है। इसी प्रकार मध्य युग में अंजू, नामेडी तथा गैस्कनी पर 1207, 1214, 1223 में भूकंप का विनाशकारी प्रभाव पड़ा। इन ऐतिहासिक घटनाओं के विश्लेषण में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार ऐतिहासिक स्पष्टीकरण की चर्चा दार्शनिक तथा इतिहासकार दोनों ने की है। कुछ स्पष्टीकरण का स्वरूप भौतिक, रासायनिक तथा ऐतिहासिक होता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण का अपना विशेष अर्थ होता है। वर्तमान के परिवेश में अतीत का स्पष्टीकरण ऐतिहासिक होता है, क्योंकि अतीत का संदर्भ वर्तमान राजनीति, समाज, नैतिकता, धर्म, संस्कृति तथा बौद्धिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इतिहासकार अतीत के किसी एक पक्ष का स्पष्टीकरण करता है, उसके द्वारा अतीतकालिक घटना का स्पष्टीकरण विषय निष्ठ होता है। घटना का चयन तथा कारणों की क्रमबद्धता इतिहासकार अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि के अनुसार प्रस्तुत करता है। नेबूर का कथन यथार्थ प्रतीत होता है कि अपनी ईमानदारी तथा निष्ठा के बावजूद इतिहासकार अतीत के चित्रण को अपने व्यक्तित्व तथा अभिरुचि से अलग नहीं कर सकता है। ऐतिहासिक व्याख्या का स्वरूप, नेचर ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। प्रत्येक इतिहासकार वर्तमान के संदर्भ में अतीत का स्पष्टीकरण करता है। इस प्रकार ऐतिहासिक स्पष्टीकरण की चर्चा दार्शनिक तथा इतिहासकार दोनों ने की है। कुछ स्पष्टीकरण का स्वरूप भौतिक, रासायनिक तथा ऐतिहासिक होता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण का अपना विशेष अर्थ होता है। वर्तमान के परिवेश में अतीत का स्पष्टीकरण ऐतिहासिक होता है। क्योंकि अतीत का संदर्भ वर्तमान राजनीति, समाज, नैतिकता, धर्म, संस्कृति तथा बौद्धिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इतिहासकार अतीत के किसी एक पक्ष का स्पष्टीकरण करता है, उसके द्वारा अतीतकालिक घटना का स्पष्टीकरण विषय निष्ठ होता है। घटना का चयन तथा कारणों की क्रमबद्धता इतिहासकार अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि के अनुसार प्रस्तुत करता है। नेबूर का कथन यथार्थ प्रतीत होता है कि अपनी ईमानदारी तथा निष्ठा के बावजूद इतिहासकार अतीत के चित्रण को अपने व्यक्तित्व तथा अभिरुचि से अलग नहीं कर सकता है। ऐतिहासिक व्याख्या का स्वरूप, नेचर ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। प्रत्येक इतिहासकार वर्तमान के संदर्भ में अतीत का स्पष्टीकरण करता है। स्पष्टीकरण का अभिप्राय कारणों की व्याख्या तथा उनकी क्रमबद्धता को निश्चित करना है। रमेश सरदर्द से पीड़ित है। इस स्थिति के स्पष्टीकरण में कहा जा सकता है कि वह अधिक समय तक प्रचंड धूप में बैठा था, वह अधिक परिश्रम करने के कारण थक गया था, अथवा वर्तमान स्थिति इन्फ्लुएंजा के प्रकोप का सूचक है। यदि ब्रूटस से यह पूछा जाए कि उसने सीजर की हत्या क्यों की, तो वह अपने निर्णय के औचित्य को सिद्ध करने के लिए नैतिक तर्क प्रस्तुत कर सकता है। अतीत में इस प्रकार स्पष्टीकरण महापुरुषों द्वारा किया जाना संभव है, परंतु इतिहासकार के स्पष्टीकरण का स्वरूप भिन्न होता है। सीजर की हत्या क्यों की गई? उसकी हत्या के क्या कारण थे? हत्या कब, क्यों, कहां तथा कैसे की गई? इतिहासकार घटना के स्पष्टीकरण में इन सभी तथ्यों पर प्रकाश डालता है। किसी भी घटना के संबंध में अभिनेता का निर्णय ही सब कुछ नहीं होता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमन ने नागासाकी तथा हिरोशिमा पर अणुबम गिराने के औचित्य को सिद्ध करते हुए कहा था कि अणुबम का प्रयोग आवश्यक हो गया था। इसके स्पष्टीकरण में इतिहासकार पूछ सकता है कि राष्ट्रपति ट्रूमन के निर्णय के अतिरिक्त अणुबम के प्रयोग का अन्य कारण भी हो सकता है। इतिहासकार का ध्यान तत्कालीन परिस्थितियों की ओर स्वभावतः आकृष्ट होता है, जिसने सेनापति को अणुबम के प्रयोग के लिए विवश कर दिया था। इतिहासकार अनेक प्रकार की संभावनाओं पर विचार करता है, अतः ऐतिहासिक स्पष्टीकरण का स्वरूप संभावनात्मक होता है, जबकि एक वैज्ञानिक का स्पष्टीकरण निश्चयात्मक होता है। तापमान गिरने के कारण पानी का बर्फ बन जाना अथवा तापमान की अधिकता के कारण पानी का वाष्प बनकर उड़ जाना एक वैज्ञानिक का निश्चयात्मक स्पष्टीकरण है। ऐसे निष्कर्ष में संभावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। घटना का आंतरिक तथा बाह्य पक्ष। इतिहास का एकमात्र अभिप्राय अतीतकालिक मानवीय कार्यों का अध्ययन होता है। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण के माध्यम से इतिहासकार मानवीय व्यवहार, इच्छा, विचार, योजना तथा नीतियों का विश्लेषण करता है। माइकल स्क्रीवेन के अनुसार इच्छा तथा विचार का स्वरूप व्यक्तिगत तथा सामूहिक होता है। नेपोलियन बोनापार्ट तथा हिटलर की व्यक्तिगत इच्छा ने उनके कार्यों का नेतृत्व किया, परंतु मंगोलों के आक्रमण के पीछे तथा उन्हें लुटेरा और लड़ाकू बनाने में व्यक्ति विशेष की इच्छा निर्णायक नहीं थी, परंतु यह सामूहिक इच्छा ही एक इच्छा की निर्णायक भूमिका रहती है। मानवीय घटनाओं में विचार की प्रधानता रहती है, क्योंकि विचार ही कार्यों की उत्प्रेरक शक्ति का उद्गम स्थल होता है। इसलिए कॉलिंगवुड ने सभी इतिहास को विचार का इतिहास कहा है। वैज्ञानिक तथा इतिहासकार के स्पष्टीकरण में अंतर होता है। वैज्ञानिक पूछ सकता है कि किस कारण नीले रंग का कागज एसिड के प्रभाव से लाल रंग बन गया। स्पष्टीकरण के माध्यम से वह स्पष्ट करता है कि किन परिस्थितियों में नीला रंगीन कागज लाल हो सकता है। जब इतिहासकार पूछता है कि ब्रूटस ने सीजर की हत्या क्यों की, इसका अभिप्राय है कि सीजर की हत्या के पीछे ब्रूटस का क्या विचार था, जिसने हत्या के लिए प्रेरित तथा विवश किया। कॉलिंगवुड के अनुसार प्रत्येक घटना के दो पक्ष होते हैं, बाह्य तथा आंतरिक। बाह्य पक्ष का अभिप्राय अतीतकालिक महान विभूतियों के कार्यों से है। उदाहरण के लिए सीजर ने किसी निश्चित तिथि पर अपनी सेना के साथ रूबिकन नदी को पार किया। रूबिकन नदी पार करना सीजर का कार्य था। यह घटना के बाह्य पक्ष को संकेत करता है। घटना के आंतरिक पक्ष का अभिप्राय उस विचार की गवेषणा से है, जिसने सीजर को किसी लक्ष्य अथवा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नदी पार करने के लिए प्रेरित तथा बाध्य किया। इस कार्य के पीछे उसका उद्देश्य किसी स्थान की विजय अथवा विद्रोहियों का दमन हो सकता है। इस प्रकार शारीरिक क्रिया के पीछे महापुरुषों के विचारों को जानना ही इतिहासकार का उद्देश्य होता है। इतिहासकार को अपने स्पष्टीकरण में इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि दोनों पक्षों में से किसी एक का परित्याग कर दे। घटना के बाह्य पक्ष का अध्ययन करते हुए इतिहासकार अपने को अभिनेता की परिस्थिति में रखकर उसके विचारों की अनुभूति करता है। कॉलिंगवुड के अनुसार जिस विचार की अनुभूति इतिहासकार के मस्तिष्क में संभव नहीं है, उसका इतिहास
नहीं हो सकता है। ऐतिहासिक घटनाएं मानवीय मस्तिष्क की प्रक्रियाएं होती हैं। अतीत के नायकों के विचार उनके कार्यों की उत्प्रेरक शक्ति है। इसलिए कॉलिंगवुड का अभिमत है कि सभी इतिहास विचार का इतिहास होता है। प्रोफेसर वॉल्स के अनुसार प्राय मनुष्य भावनाओं तथा विचार के परिवेश में चिंतन करता है तथा चिंतन के अनुरूप कार्य करता है। कॉलिंगवुड के इतिहास की अवधारणा क्रिया की अवधारणा है जिसमें विचार प्रधान तथा निर्णायक तत्व होता है। कॉलिंगवुड ने स्वयं कहा है कि ऐतिहासिक गवेषणा का अभिप्राय घटना का अन्वेषण नहीं अपितु उसमें अंतर्निहित विचार तत्व की गवेषणा है। इतिहासकार द्वारा निष्कर्ष की प्राप्ति के पश्चात कारणों की गवेषणा की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि यदि वह जानता है कि क्या घटना हुई तो यह भी जान सकता है कि घटना क्यों हुई। अतः ऐतिहासिक स्पष्टीकरण का मुख्य अभिप्राय घटना में अंतर्निहित विचार तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए। इतिहासकार के स्पष्टीकरण में नायकों की इच्छा, विचार, प्रस्तावना, आशा, योजना आदि की व्याख्या होती है। इन्हीं तथ्यों पर इतिहासकार को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि ये तत्व बाह्य क्रियाओं के आधार पर होते हैं। इतिहासकार अपनी अनुमान शक्ति द्वारा इनकी अनुभूति करता है। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में इतिहासकार को तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए: एक, अतीत के नायकों का विचार तथा इच्छा का ज्ञान; दो, दूसरों के मस्तिष्क में नायक के विचार की पुनर्कल्पना का ज्ञान; तीन, दूसरों के मस्तिष्क में नायक के विचार की पुनर्कल्पना, पुनर्रचना तथा पुनरानुभव। कॉलिंगवुड के सिद्धांत की आलोचना। प्रोफेसर वॉल्स का अभिमत है कि ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में विचार को अत्यधिक महत्व देना एक भूल है। ऐतिहासिक घटनाओं की निर्णायक शक्तियाँ विचार के अतिरिक्त भी होती है। एक, कॉलिंगवुड के अनुसार सभी इतिहास विचार का इतिहास है। इसका यह अभिप्राय है कि मनुष्य अपने इतिहास का निर्णायक है। प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव नगण्य है। प्रायः बाढ़, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण मानवीय योजनाएं विफल हुई है। मोहम्मद तुगलक की दोआब में कर वृद्धि योजना की विफलता का कारण अकाल तथा अनावृष्टि था। नेपोलियन बोनापार्ट की रूसी अभियान की असफलता का कारण अचानक हिमपात था। इसी प्रकार भूकंप के कारण जापान, ईरान तथा टर्की में अनेक नगरों का विनाश मानवीय इच्छा के विपरीत हुआ। इस प्रकार की दैवीय शक्तियों तथा प्राकृतिक प्रकोपों के समक्ष इच्छा नगण्य रही है। अतः सभी इतिहास विचार प्रधान नहीं हो सकता है। दो, प्रायः मनुष्य अपने विचार के अनुसार कार्य करता है, परंतु कभी कभी दुर्घटना के समय उसे सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डग हैमरशोल्ड ने कांगो में शांति स्थापना हेतु न्यूयॉर्क से प्रस्थान किया, परंतु वायुयान दुर्घटना में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। क्या ऐतिहासिक स्पष्टीकरण के माध्यम से इतिहासकार इस घटना में विचार की गवेषणा कर सकते हैं? अतः इतिहास को विचार प्रधान नहीं कहा जा सकता है। तीन, राजनीतिक तथा सैनिक इतिहास में मानवीय इच्छा कारण मात्र हो सकती है, परंतु आर्थिक इतिहास में मानवीय इच्छा विचार की भूमिका नगण्य होती है। 1945 में सर इसाया बर्लिन ने ऐतिहासिक अवसंभाविता नामक एक लेख में इतिहास की स्वतंत्र गति की प्रधानता स्वीकार की। उनके अनुसार इतिहास प्रवाह तथा नियति के समक्ष मनुष्य असहाय होता है। ईएच कार का अभिमत है कि मनुष्य ईश्वरीय इच्छा के अनुसार कार्य करता है। टॉलस्टॉय ने एडम स्मिथ, हीगेल तथा कार्ल मार्क्स की असंभाविता संबंधी दृष्टिकोण की पुष्टि की है। 1917 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा था कि ये युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते, परंतु घटनाएं उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए विवश कर देंगी। इस प्रकार अधिकांश विद्वानों ने ऐतिहासिक घटना में मानवीय इच्छा की भूमिका को अस्वीकार किया है। चार, गेटे के अनुसार अतीत के नायकों ने प्रायः दूसरों की भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य किया है। हिटलर द्वारा राइन भूमि पर अधिकार योजना के पीछे जर्मन जनता की भावना निर्णायक थी। हिटलर की शास्त्रीकरण की नीति के पीछे महान शक्तियों से प्रतिशोध भावना प्रधान रही है। जर्मन जनता की भावनाओं ने उसे राष्ट्र संघ से संबंध तोड़ने, ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने तथा सुडेटन लैंड पर आक्रमण करने के लिए विवश कर दिया। हिटलर का व्यक्तिगत विचार एक कारण मात्र हो सकता है, परंतु उपरोक्त नीतियों के पीछे समकालीन जनता की भावनाओं की निर्णायक भूमिका रही है। पांच, गार्डिनर के अनुसार ऐतिहासिक विभूतियां मृत, समाधिस्थ तथा चीर शांत हो चुकी हैं। वर्तमान में इतिहासकार के पास एक्सरे जैसा कोई उपकरण नहीं है जिससे अतीत के नायकों के विचारों को देखा जा सके। यही नहीं बल्कि मस्तिष्क किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपदा है। कोई भी इतिहासकार इस व्यक्तिगत संपदा का भागी नहीं हो सकता है। अतः नायक के विचार की अनुभूति कोई भी इतिहासकार यथावत नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार ही कर सकता है। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में सामान्य नियम। कार्ल जी हिम्पेल के अनुसार सार्वभौमिक परिस्थिति में साक्ष्यों पर आधारित किसी विचार की पुष्टि को नियम कहते हैं। विज्ञान में सामान्य नियम का प्रयोग स्पष्टीकरण के माध्यम से घटनाओं की क्रमबद्धता तथा भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। कुछ विद्वानों की अवधारणा है कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान में जिस सामान्य नियम का प्रयोग किया जाता है उसका स्वरूप सार्वकालिक तथा सार्वभौमिक है। इतिहास का संबंध विशेष व्यक्ति, स्थान तथा विशेष घटना से होता है। इन ऐतिहासिक तथ्यों का स्वरूप सार्वकालिक तथा सार्वभौमिक नहीं है। अतः इतिहास में सामान्य नियम के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं है। हेम्पल के अनुसार ऐतिहासिक स्पष्टीकरण को सामान्य नियम से अलग करना एक भूल है। सामान्य नियम का कार्य वैज्ञानिक भविष्यवाणी होता है। अतीतकालिक घटना के आधार पर वैज्ञानिक ग्रहों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर भविष्य में चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता है। स्पष्टीकरण व्याख्या में इतिहास का विभिन्न घटनाओं की क्रमबद्धता को घटनाओं को क्रमबद्ध करके अतीत का चित्रण प्रस्तुत करता है। उसका अभिप्राय घटनाओं की क्रमबद्धता द्वारा दिशा निर्देश होता है। वह अपने को तत्कालीन परिस्थितियों में मानसिक रूप में रखकर परिस्थितियों की अनुभूति करता है कि परिस्थितियों ने किस प्रकार मानवीय कार्यों को प्रभावित किया। इस प्रकार इतिहासकार अपनी उपलब्धि का प्रस्तुतीकरण कुछ नियमों के आधार पर करता है। इन नियमों के द्वारा वह अतीतकालिक घटनाओं को अर्थ प्रदान करता है। वह अपने को स्पष्टीकरण में कारण तथा प्रभाव की व्याख्या करता है। इतिहासकार अपनी सार्वभौमिक परिकल्पना द्वारा इतिहास को मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तथा सामाजिक भागों में विभक्त करता है। हेम्पेल की दृष्टि में इतिहास का इस प्रकार विभक्तिकरण एक प्रकार के नियम का संकेत करता है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान में ऐसे ही नियमों का क्रियान्वयन होता है। एक सेना के पराजय के कारणों की व्याख्या में इतिहासकार सामान्य नियम द्वारा कह सकता है कि उपयुक्त रसद सामग्री का अभाव, प्रतिकूल मौसम तथा महामारी कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार किसी क्रांति के कारणों की व्याख्या में इतिहासकार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक कारणों का विश्लेषण सामान्य नियम के आधार पर करता है। यद्यपि अतीतकालिक घटना का पुनः प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है, फिर भी वह वर्तमान में सामान्य नियमों द्वारा अतीतकालिक विभिन्न घटनाओं को क्रमबद्धता प्रदान करता है। अतः ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में सामान्य नियमों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। हेम्पेलियन दृष्टिकोण की आलोचना। एक, माइकल स्क्रीवन ने हेम्पल के विचार का खंडन किया है। इतिहासकार अपने ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में न तो सामान्य नियम का प्रयोग कर सकता है और न भविष्यवाणी करने की स्थिति में होता है। सामान्य नियम के स्थान पर उसके लिए निगमन तर्क विधि का प्रयोग उचित होता है। विलियम विजेता ने स्कॉटलैंड पर आक्रमण नहीं किया। इसके स्पष्टीकरण में इतिहासकार कह सकता है कि स्कॉटलैंड के शासक की पराजय के पश्चात उसने अपने राज्य की उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया है, अतः स्कॉटलैंड पर आक्रमण का कोई औचित्य नहीं था। इस स्पष्टीकरण में किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। इतिहासकार अपने व्यक्तिगत ज्ञान द्वारा किसी विशेष निष्कर्ष को प्राप्त करता है। प्रोफेसर कार्ल जी हेम्पेल ने इसे निगमन तर्क विधि की संज्ञा दी है। इतिहासकार कथन मात्र के आधार पर स्पष्टीकरण करता है। तर्कयुक्त व्याख्या उसके स्पष्टीकरण को सरल, सुगम तथा सुबोध बनाती है। साक्ष्यों के अभाव में स्पष्टीकरण अनुपयुक्त हो सकता है। इतिहासकार के स्पष्टीकरण में औचित्य का आधार यथार्थता होनी चाहिए। अपने स्पष्टीकरण में इतिहासकार कब, क्यों, कहां और कैसे आदि प्रश्नों का उत्तर देता है, उसके लिए सामान्य नियम की आवश्यकता नहीं होती है। दो, विज्ञान में स्पष्टीकरण का अभिप्राय भविष्यवाणी से है। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में भविष्यवाणी के लिए स्थान नहीं है। स्क्रीवन के अनुसार इतिहासकार भविष्य वक्ता नहीं है और न उसे उससे भविष्यवाणी की उपेक्षा करनी चाहिए। इतिहास में सार्वभौमिक परिकल्पना संभव है, भविष्यवाणी नहीं। किसी भूकंप की भविष्यवाणी तो मूर्खता है और उसके विनाशकारी प्रभाव की कल्पना उपहासास्पद है। इतिहासकार का कार्य अतीत की घटना तथा उसके प्रभाव की व्याख्या है। भावी घटना की परिकल्पना इतिहास क्षेत्र के बाहर है। भविष्यवाणी का अभिप्राय घटना का पूर्वाभास करना होता है। इतिहासकार का कार्य घटना का पूर्वाभास नहीं होता है, क्योंकि वह अतीत का अध्ययन करता है, भविष्य का नहीं। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण का उद्देश्य अतीत की गवेषणा तथा व्याख्या है। इतिहासकार को अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि का परित्याग कर यथातथ्य प्रस्तुतीकरण का प्रयास करना चाहिए। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण की विश्वसनीयता के लिए यथार्थता की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण तथा सामान्यीकरण। ऐतिहासिक घटनाओं की क्रमबद्धता के पश्चात इतिहासकार सामान्यीकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। गार्डिनर के अनुसार सामान्यीकरण ऐतिहासिक घटना का मार्गदर्शन है। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में सामान्यीकरण का अभिप्राय सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक ज्ञान का प्रस्तुतीकरण होता है, जो जटिल विषय को सरल, सुबोध तथा सुगम बना देता है। उदाहरणार्थ, शक्ति भ्रष्ट करती है तथा सर्वशक्तिमान सभी को भ्रष्ट बना देता है। इस प्रकार एक भ्रष्ट व्यवस्था की अभिव्यक्ति इतिहासकार एक वाक्य द्वारा करता है। इसी प्रकार मानसिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत योग्यता तथा एक वर्ग की स्पष्ट करने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे प्यूरिटन, मस्तिष्क प्रशियन अधिकारी, विक्टोरियन व्यापारी आदि। इतिहास में इस प्रकार का सामान्यीकरण एक विशेष व्यवस्था का संकेत करता है। एक व्यक्ति के प्रतिशोध की अभिव्यक्ति के लिए चाणक्य का उदाहरण दिया जाता है कि उसने कुशा का अंत करने के लिए उसकी जड़ में मट्ठा छोड़ा था। इसी प्रकार एक दुर्व्यवस्था की अभिव्यक्ति के लिए लोकप्रिय हिंदी कहावत है, टकाशेर भाजी टकाशेर खाजा, अंधेरपुर नगरी चौपट राजा। इस प्रकार सामान्यीकरण के माध्यम से इतिहासकार कुछ शब्दों तथा वाक्यों के माध्यम से ऐतिहासिक स्पष्टीकरण करता है। चार्ल्स फ्रैंकल के अनुसार सामान्यीकरण इतिहासकार के वर्ण विषय को सजीवता प्रदान करता है। इतिहासकार के सामान्यीकरण को विशिष्ट सामान्यीकरण की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि वह तर्क वितर्क का प्रयोग ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में करता है। अर्नेस्ट नॉगेल ने ऐसे स्पष्टीकरण को सूक्ष्म भौतिक शास्त्र का बेतार भौतिक शास्त्र कहा है। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में सामान्यीकरण के माध्यम से वह कारणों की व्याख्या करता है। लुई चतुर्दश की अलोकप्रियता का कारण उसकी कठोर कर नीति थी। इतिहासकार अपने स्पष्टीकरण में यह भी कह सकता है कि कठोर कर नीति उसकी अलोकप्रियता का कारण था। इतिहासकार अपने सामान्यीकरण की पुष्टि अनेक तर्कों द्वारा करता है। क्लियोपेट्रा की सुंदरता ने एंटोनी को स्मिथ में रुकने के लिए विवश कर दिया था। इतिहासकार इसे यथावत स्वीकार न करके अपने सामान्यीकरण की पुष्टि के लिए अनेक प्रकार के तर्क वितर्क का प्रयोग करते हैं। क्या सभी सेनापति सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होते हैं? यह संदेहास्पद है। क्या क्लियोपेट्रा की सुंदरता ने मिस्र जाने वाली सभी महान विभूतियों को आकृष्ट कर मिस्र में रुकने के लिए विवश किया? इसका कोई अर्थ प्रमाणिक नहीं है। क्या क्लियोपेट्रा जैसी सुंदर स्त्री को देखकर एंटोनी अन्य अवसरों पर भी मुग्ध हुआ था? उसका सैनिक व्यक्तित्व तथा पदोन्नति इस तर्क को प्रमाणित नहीं करता। क्या अन्य सेनापति सुंदरता पर मुग्ध हुए और सैनिक अभियान में विलंब किया है? इसके प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार तर्क वितर्क के पश्चात इतिहासकार ने अपने सामान्यीकरण में क्लियोपेट्रा की सुंदरता के प्रति आकर्षण को उद्धृत किया है। एक अफगान इतिहासकार ने लिखा है कि गौड़ का किला छोड़ते समय शेर खान ने हुमायूं को मुग्ध करने के लिए एक सुंदर स्त्री छोड़ दिया था। उसकी सुंदरता के प्रति हुमायूं इतना अधिक मुग्ध हो गया था कि एक माह तक अधिकारियों से साक्षात्कार तक नहीं हुआ। ऐसे अवसर पर इतिहासकार क्लियोपेट्रा के प्रति एंटोनी का आकर्षण कहकर सामान्यीकरण प्रस्तुत करता है। इस एक वाक्य के द्वारा संपूर्ण स्थिति को स्पष्ट कर देता है। अर्नेस्ट नॉगेल के अनुसार सामान्यीकरण के माध्यम से इतिहासकार अपने ऐतिहासिक स्पष्टीकरण को सारयुक्त बनाता है। यही नहीं, वह अपने वर्ण्य विषय को सूक्ष्म, स्पष्ट एवं विधायुक्त बनाता है। पूर्व स्थिति तथा निरंतरता, प्री कंडीशन कंटिन्यूटी। प्रोफेसर पापर के अनुसार ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में पूर्व स्थिति तथा दशा का ज्ञान आवश्यक हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक ऐतिहासिक घटना पूर्व स्थिति की उपज होती है। फ्रांस की राज्य क्रांति का आरंभ स्टेट्स जनरल के अधिवेशन से प्रारंभ होता है। इतिहासकार इस घटना के स्पष्टीकरण में पूर्व स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। उसे फ्रांस की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विशेष प्रकाश डालना पड़ता है। वह दार्शनिकों के योगदान का विवरण प्रस्तुत करता है। अतः फ्रांस की राज्य क्रांति पूर्व स्थिति का ही परिणाम था। क्रांति तथा तत्पश्चात की घटनाएं पूर्व स्थिति की निरंतरता का संकेत करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ शेराजीवो में राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या से होता है, परंतु ऐतिहासिक स्पष्टीकरण के लिए इतिहासकार पूर्व स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता है। उग्र राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, शस्त्रीकरण की नीति, नौसेना का विस्तार, महान शक्तियों की गुटबंदी, त्रिगुट राष्ट्र संधि, फ्रांस रूस आंग्ल संधि इत्यादि का विस्तृत उल्लेख आवश्यक हो जाता है। शेराजीवो की घटना तो निरंतरता की सूचक है। 1526 में बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का युद्ध पूर्व स्थिति की निरंतरता का क्रम है। मध्य एशिया की परिस्थितियों ने बाबर को मध्य एशिया छोड़ने के लिए विवश किया तथा भारतवर्ष की राजनीतिक स्थिति ने उनका ध्यान आकृष्ट किया। अतः 1526 में पानीपत का युद्ध पूर्व स्थिति की निरंतरता का परिणाम था। 1582 में अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही पूर्व स्थिति का परिणाम था। इसकी पृष्ठभूमि भक्ति आंदोलन के समाज सुधार को तथा सूफी संतों ने तैयार की थी। उसके माता पिता, गुरु, मित्र, राजपुत्र, रानियों के प्रभाव आदि ने उसे उदारवादी नीति के लिए विवश कर दिया था। अतः ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में पूर्व स्थिति का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। गैलो ने स्पष्ट लिखा है कि घटना को सुबोध बनाने के लिए पूर्व स्थिति का ज्ञान इतिहासकार के लिए अपरिहार्य है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण के लिए भारत सरकार का निर्णय तथा प्रधान सेनापति का आदेश पूर्व स्थिति का संकेत करता है। आदेश की स्वीकृति उसका कार्यान्वयन निरंतरता की विधि है। इस निरंतरता के क्रम में वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश देता है। पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण, पाकिस्तानी सेना की पराजय तथा आत्मसमर्पण, तत्पश्चात बांग्लादेश राष्ट्र का अभ्युदय निरंतरता की विधियाँ हैं। अतः आदेश की पूर्व स्थिति तथा उसके क्रियान्वयन का ज्ञान ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में आवश्यक है। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। इतिहासकार को आश्वस्त होना पड़ता है कि उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री अर्थपूर्ण है। 2. उसे अपने को आश्वस्त करना पड़ता है कि बाह्य तथा आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर वह जिस स्पष्टीकरण को प्रस्तुत कर रहा है उसे अन्य इतिहासकारों ने नहीं प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में इतिहासकार से कुछ नवीनता की अपेक्षा की जाती है। 3. इतिहासकार को अपने को आश्वस्त करना पड़ता है कि वह जिस ऐतिहासिक सामग्री का उपयोग कर रहा है वह समयानुकूल एवं उपयुक्त है। 4. उसे संतुष्ट होना पड़ता है कि उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री विश्वसनीय है तथा ऐतिहासिक सामग्री उस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसको घटना संबंधी जानकारी थी। इस प्रकार उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री का प्रयोग अतीतकालिक घटना के स्पष्टीकरण में इतिहासकार वर्तमान के परिवेश में करता है, क्योंकि ऐतिहासिक स्पष्टीकरण का अभिप्राय वर्तमान परिवेश में अतीत का स्पष्टीकरण होता है। वर्तमान का निर्माण अतीत की आधारशिला पर हुआ है, इसलिए क्रोचे ने सभी इतिहास को समसामयिक इतिहास कहा है। प्रत्येक इतिहासकार अपने ऐतिहासिक स्पष्टीकरण के औचित्य को वर्तमान के परिवेश में सिद्ध करता है। यद्यपि ऐतिहासिक स्पष्टीकरण सामान्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, फिर भी इतिहासकार के लिए व्यवहारिक ज्ञान अपरिहार्य है। अतीत की काल्पनिक पुनर्रचना। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण का एकमात्र अभिप्राय अतीत का काल्पनिक प्रस्तुतिकरण है। काल्पनिक चित्र इसलिए कहा गया है कि अतीत का पुनर्प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। इतिहासकार अतीत के कोणों का न तो स्वयं अवलोकन कर सकता है और न अपने समसामयिक समाज को उसका दिग्दर्शन ही करा सकता है। ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित वह अतीत का एक काल्पनिक चित्र प्रस्तुत करता है। घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध करने में उसे अनुमान शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। कॉलिंगवुड ने इतिहासकार की इस प्रक्रिया को अंतर्वेशन, इंटरपोलेशन की संज्ञा दी है। वह तत्कालीन लेखकों तथा समसामयिक इतिहासकारों के कथनों के अनुसार घटना को क्रमबद्ध करता है। सीजर एक दिन रोम दूसरे दिन गाल में था, परंतु समकालीन इतिहासकारों ने सीजर की यात्रा के अभिप्राय का वर्णन नहीं किया। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में वर्तमान इतिहासकार अंतर्वेशन प्रक्रिया के माध्यम से यात्रा के अभिप्रायों पर विस्तृत प्रकाश डालता है। इस प्रकार वह रचनात्मक इतिहास की काल्पनिक पुनर्रचना करता है। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण का एकमात्र उद्देश्य घटना का क्रमबद्ध तथा अर्थपूर्ण प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। काल्पनिक पुनर्रचना एक फंदा अथवा जाल है। इतिहासकार की काल्पनिक पुनर्रचना इतिहास साहित्यिक रचना की भांति पूर्ण रूपेण काल्पनिक नहीं अपितु साक्ष्यों पर आधारित होती है। अतः इतिहासकार की रचना वर्तमान में उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित पुनर्रचना होती है। साहित्यकार कवि तथा उपन्यासकार की रचना मात्र कल्पना प्रधान होती है, परंतु इतिहासकार का प्रत्येक वाक्य साक्ष्य पर आधारित रहता है। इसलिए अरस्तु ने कविता को सार्वभौमिक तथा इतिहास को समय तथा स्थान के परिवेश में विशेष संज्ञा दी है। साक्ष्य प्रधान इतिहासकार की काल्पनिक पुनर्रचना समय तथा स्थान के परिवेश में विशिष्ट होती है। स्पष्टीकरण का सारांश। विलियम ग्रे ने ऐतिहासिक स्पष्टीकरण के संबंध में कुछ आधारभूत समस्याओं का पर प्रकाश डाला है। इतिहासकार ने निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक, ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में अतीत की विभूतियों तथा अभिनेताओं की इच्छा, विचार, उद्देश्य, आशा तथा योजना इत्यादि की व्याख्या की जाती है। इतिहासकार से इन्हीं तथ्यों के स्पष्टीकरण की अपेक्षा करनी चाहिए। दो, विचार तथा अच्छा मानवीय कार्यों के कारण होते हैं। विचार तथा इच्छा मानवीय कार्यों के कारण होते हैं। इतिहासकार उन्हें प्रत्यक्ष नहीं देख सकता है। ऐतिहासिक स्रोतों में अंतर्निहित इन उत्प्रेरक शक्तियों का अनुमान भर कर सकता है। 3, इतिहासकार अतीत के नायकों के उद्देश्य का अनुभव नहीं कर सकता है। घटना के संबंध में उनकी मानसिक प्रक्रिया को यथावत नहीं सोचा जा सकता है। उनके विचारों की पुनरानुभूति न करके मात्र कल्पना द्वारा अनुमान किया जा सकता है। 4, इन कठिनाइयों के बावजूद इतिहासकार के पास अतीतकालिक नायकों के विचारों को जानने के लिए अद्भुत शक्तियां हैं। वह काल्पनिक ढंग से अपने को नायक की परिस्थिति में रखकर उसके विचार की अनुभूति अपने मस्तिष्क में करता है। ऐतिहासिक घटना का ज्ञान वह अपनी अंतश्चेतना द्वारा प्राप्त करता है। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में वह अपने तर्क के औचित्य को सिद्ध करता है। 5, वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की भांति ऐतिहासिक स्पष्टीकरण सामान्यीकरण सिद्धांत पर आधारित है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान का स्पष्टीकरण ऐतिहासिक होता है। यदि सूर्य, चंद्र तथा पृथ्वी की वर्तमान स्थिति से एक वर्ष पूर्व की तुलना की जाए तो उसे ऐतिहासिक स्पष्टीकरण कहा जा सकता है। अतः सामान्यीकरण सिद्धांत द्वारा विशेष ऐतिहासिक घटना का स्पष्टीकरण सरल, सुबोध तथा स्पष्ट हो जाता है। 6, ऐतिहासिक स्पष्टीकरण इतिहासकार की कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। उसके लिए कल्पना तथा अंतश्चेतना सहायक उपकरण होते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक स्पष्टीकरण का स्वरूप पूर्ण रूपेण अनुमानित होता है। समीक्षा। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में वर्तमान निर्णायक तत्व होता है। वर्तमान में रुचि ही इतिहासकार को अतीत की गवेषणा के लिए प्रेरित तथा बाध्य करती है। वर्तमान के परिवेश में अतीत की व्याख्या की उपादेयता इतिहासकार को अतीत के कोणों के अवलोकन के लिए प्रोत्साहित करती है। चंद्र धरातल पर मानव अवतरण की पृष्ठभूमि अतीतकालिक प्रयासों ने तैयार की थी। अतः वर्तमान तथा अतीत का संबंध ऐतिहासिक स्पष्टीकरण की रीढ़ है। गैली के अनुसार इतिहासकार को अपने स्पष्टीकरण में ध्यान रखना चाहिए कि उसका पुनीत कर्तव्य घटना संबंधी कहानी मात्र प्रस्तुत करना है। इस कहानी के माध्यम से वह समसामयिक समाज के प्रश्नों का उत्तर देता है। समसामयिक सामाजिक आवश्यकता उसके ऐतिहासिक स्पष्टीकरण का आधार होती है। माइकल स्क्रीवेन का अभिमत है कि ऐतिहासिक स्पष्टीकरण का आधार विश्वसनीय मानवीय व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। बाशवेल के अनुसार ऐतिहासिक स्पष्टीकरण के लिए इतिहासकार में विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मानवीय मस्तिष्क की महान शक्तियां मरणोपरांत अचल एवं चीर शांत हो चुकी है। महान विभूतियों से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य जब उसे उपलब्ध है तो अन्वेषण प्रक्रिया तथा किसी उच्च स्तर की कल्पना की आवश्यकता नहीं। एक साधारण कविता की रचना में जिस योग्यता की आवश्यकता होती है, एक इतिहासकार में मात्र इतनी ही दक्षता आवश्यक है। विषय में प्रवेश तथा यथार्थ चित्रण की क्षमता रखने वाला कोई भी व्यक्ति अतीत का ऐतिहासिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। स्क्रीवेन ने भी इस तर्क को मान्यता प्रदान की है। इतिहास में अन्वेषण की आवश्यकता नहीं, अपितु तथ्यों के आधार पर अर्थान्वेषण होना चाहिए। मानवीय मस्तिष्क की महानतम शक्तियों का प्रयोग तथ्यों को प्रकाशित करने तथा उसमें अंतर्निहित अर्थ के प्रस्तुतीकरण में होना चाहिए। बासवेल तथा माइकल स्क्रीवेन का विचार तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है। इतिहास लेखन एक विशेष प्रकार का शिल्प है। ऑस्कर वाइल्ड ने उचित ही कहा है कि कोई भी मूर्ख इतिहास बना सकता है, परंतु प्रतिभावान व्यक्ति ही इतिहास लिखता है। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण का अभिप्राय इतिहास लेखन से है। इसके लिए इतिहासकार में एक विशेष शिल्प की आवश्यकता है। ऐतिहासिक व्याख्या, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। जीआर एल्टन के अनुसार इतिहास वह है जिसे इतिहासकार लिखता है। इस प्रकार इतिहासकार का इतिहास ही उसकी व्याख्या होती है। ईएच कॉर ने उचित ही कहा है कि इतिहास का अर्थ उसकी व्याख्या है। अतः व्याख्या एक प्रकार का दुर्वीक्षक यंत्र है जिसकी सहायता से इतिहास का सुदूर अतीत के कोणों में अंतर्निहित सूक्ष्म तथ्यों का निरीक्षण करता है। यह भी सत्य है कि इस उपकरण के माध्यम से वह संपूर्ण अतीत का अवलोकन नहीं कर सकता, क्योंकि अतीत का क्षेत्र विस्तृत एवं असीमित है। व्याख्या रूपी दुर्वेक्षक यंत्र से इतिहासकार अतीत के जिस भाग को देखता है उसी का वर्णन करता है। परिणाम स्वरूप उसकी ऐतिहासिक व्याख्या का स्वरूप विषयनिष्ठ तथा व्यक्तिगत होना अपरिहार्य है। ऐतिहासिक व्याख्या में समानता की अपेक्षा विभिन्नता की अधिक संभावना रहती है। अनेकता का प्रमुख कारण है अतीत का अदृश्य स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर की भांति अतीत भी अविगत अलग तथा अरूप है। अनादि तथा अलग परम सत्ता को दार्शनिक तथा धर्मावलंबियों ने अपने ढंग से देखा तथा अनुभव किया है। गोस्वामी तुलसीदास का कथन है कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तिन तैसी। आदिशक्ति एक है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार उसे देखता है तथा अनुभूति के आधार पर उसका वर्णन करता है। इसी प्रकार अदृश्य अतीत का भी रहस्यवादी स्वरूप अविगत अलग तथा अरूप है। परम सत्ता की भांति अतीत के इस रहस्यवादी स्वरूप में अनेक दार्शनिकों का ध्यान आकृष्ट किया है। यही कारण है कि 18वीं तथा 19वीं सदी में इतिहास दार्शनिकों के अध्ययन का गूढ़ विषय बन गया। कांट, हर्डर, हिगेल, कार्ल मार्क्स, कांदोर्शे, क्रोचे तथा बीको आदि प्रख्यात दार्शनिकों ने मनोनुकूल ढंग से अतीत का निरूपण किया तथा उसका रहस्योद्घाटन समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। रहस्यवादी अतीत के संबंध में उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण ही इतिहास की व्याख्या करता है। 20वीं सदी में भी अतीत ने दार्शनिकों का ध्यान आकृष्ट किया है। सर इसाया बर्लिन, कार्ल आर पापर, बेकर, कार्ल जी हेमफेल्ड, विलियम रे तथा वाल्स आदि तत्वमीमांसा दर्शन के प्रख्यात विद्वानों ने भी अतीत का रहस्योद्घाटन किया है। सभी लोगों ने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अतीत का अवलोकन किया है तथा व्याख्या के माध्यम से अतीत के रहस्य का प्रस्तुतीकरण किया है। परिणाम स्वरूप वस्तुनिष्ठ अतीत विषयनिष्ठ बन गया। इस प्रकार ऐतिहासिक व्याख्या में समानता तथा एकता की आशा एक भूल है। कवि तथा साहित्यकार की भांति इतिहासकार भी अपने युग का प्रतिनिधि होता है। वह समसामयिक समाज तथा अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अतीत का निरूपण करता है। इसलिए क्रोचे ने सभी इतिहास को समसामयिक कहा है। ऐसी परिस्थिति में काल तथा स्थान ने ऐतिहासिक व्याख्या को सर्वाधिक प्रभावित किया है। अतः यह स्पष्ट है कि दार्शनिकों तथा इतिहासकारों ने अपनी व्याख्या के माध्यम से अतीत का सूक्ष्म दर्शन स्वांत सुखाय के लिए नहीं है। उन लोगों ने एक दायित्व के साथ सुदूर अतीत के रहस्यमय कोणों का स्वयं अवलोकन किया तथा समसामयिक को उनका दिग्दर्शन कराया। इस प्रकार समसामयिक सामाजिक आवश्यकता तथा भावी पीढ़ी के प्रति दायित्व के भावना उनके ऐतिहासिक व्याख्या में अपने आप प्रस्फुटित होने लगी। दार्शनिकों तथा इतिहासकारों ने ऐतिहासिक व्याख्या के माध्यम से अतीत, वर्तमान तथा भविष्य को संपृक्त करने के लिए एक सेतुबंध का निर्माण किया है। जो समसामयिक समाज को अतीत का अवलोकन, वर्तमान को प्रकाशित तथा सुखद भविष्य का दिशा निर्देशन करता है। यही अतीत की ऐतिहासिक व्याख्या का अभिप्राय रहा। ऐतिहासिक व्याख्या में अतीत वर्तमान इस प्रकार समसामयिक समाज आवश्यकता तथा भावी पीढ़ी के प्रति दायित्व की भावना उनकी ऐतिहासिक व्याख्या में अपने आप प्रस्फुटित होने लगी। दार्शनिकों एवं इतिहासकारों ने ऐतिहासिक व्याख्या के माध्यम से अतीत वर्तमान तथा भविष्य को संपृक्त करने के लिए एक सेतुबंध का निर्माण किया है, जो समसामयिक समाज को अतीत का अवलोकन, वर्तमान को प्रकाशित तथा सुखद भविष्य का दिशा निर्देश कराता है। यही अतीत की ऐतिहासिक व्याख्या का अभिप्राय रहा है। ऐतिहासिक व्याख्या में अतीत वर्तमान तथा भविष्य का युगबोध। अतीत वर्तमान एवं भविष्य अनंत काल का काल्पनिक विभाजन है। यह एक गतिशील रेखा है। कुछ समय पहले जो भविष्य रहा, आज वर्तमान तथा कल वही अतीत बन जाएगा। इतिहासकार की ऐतिहासिक व्याख्या में अतीत वर्तमान तथा भविष्य का संश्लेष संबंध रहता है। अतीत के अध्ययन की उपयोगिता समाज के समक्ष एक विचारणीय प्रश्न है। उपयोगितावादी इतिहासकारों का अभिमत है कि अतीत की व्याख्या वर्तमान तथा भविष्य के लिए उपयोगी है, इसलिए इतिहासकार अतीत की व्याख्या करता है। देवी के अनुसार अतीत के प्रति प्रेम अतीत के लिए नहीं बल्कि सुरक्षित एवं सुसंपन्न वर्तमान के लिए इस उद्देश्य से किया जाता है कि वह सुखद भविष्य का निर्माण करेगा। प्रत्येक इतिहासकार अतीत की व्याख्या वर्तमान के संदर्भ में सामाजिक उपयोगिता तथा भावी पीढ़ी के लिए करता है। ऑक्सफोर्ड का भी अभिमत है कि व्यवहारिक अतीत की आधारशिला पर वर्तमान का निर्माण हुआ है और यह मनुष्य के भविष्य को प्रभावित करेगा। यदि इतिहासकार की रुचि वर्तमान और भविष्य में नहीं होगा तो वह अतीत का अध्ययन नहीं करेगा। वह अपनी व्याख्या में अतीत वर्तमान तथा भविष्य पर निरंतर दृष्टि रखेगा। अतीत के अध्ययन की उपयोगिता समाज के समक्ष एक विचारणीय प्रश्न है। उपयोगितावादी इतिहासकारों का अभिमत है कि अतीत की व्याख्या वर्तमान तथा भविष्य के लिए उपयोगी है, इसलिए इतिहासकार अतीत की व्याख्या करता है। देवी के अनुसार अतीत के प्रति प्रेम अतीत के लिए नहीं बल्कि सुरक्षित एवं सुसंपन्न वर्तमान के लिए इस उद्देश्य से किया जाता है कि वह सुखद भविष्य का निर्माण करेगा। प्रत्येक इतिहासकार अतीत की व्याख्या वर्तमान के संदर्भ में सामाजिक उपयोगिता तथा भावी पीढ़ी के लिए करता है। ओक्सार्ट का भी अभिमत है कि व्यवहारिक अतीत की आधारशिला पर वर्तमान का निर्माण हुआ है और यह मनुष्य के भविष्य को प्रभावित करेगा। यदि इतिहासकार की रुचि वर्तमान और भविष्य में नहीं होगा तो वह अतीत का अध्ययन नहीं करेगा। वह अपनी व्याख्या में अतीत वर्तमान तथा भविष्य पर निरंतर दृष्टि रखता है। व्याख्या को वर्तमान ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। प्रत्येक इतिहासकार समसामयिक सामाजिक आवश्यकता अनुसार अतीत की व्याख्या करता है। इसलिए क्रोचे ने इतिहास को समसामयिक कहा है, क्योंकि प्रत्येक इतिहासकार वर्तमान दृष्टिकोण से अतीत की व्याख्या करता है। इस प्रकार वर्तमान साक्ष्य पर आधारित इतिहासकार की व्याख्या को वर्तमान कह सकते हैं। हिगेल ने भी इतिहास की व्याख्यात्मक प्रक्रिया का विकास वर्तमान में ही देखा था, उसके लिए भविष्य का कोई महत्व नहीं था। प्रशा के राजतंत्र के विकास में ही उसने ऐतिहासिक व्याख्या को प्रतिष्ठापित किया। इस प्रकार हिगेल के लिए भी वर्तमान ही सब कुछ था, उसकी दृष्टि में भविष्य की कल्पना का कोई महत्व नहीं था। अन्य इतिहासकारों ने भी अतीत की व्याख्या में वर्तमान की भूमिका तथा उसके महत्व को स्वीकार किया है। E.H. कार के अनुसार वस्तुतः इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत परिसंवाद है। यह एकाकी व्यक्तित्व के बीच संवाद नहीं बल्कि अतीतकालिक समाज तथा वर्तमानकालिक समाज के बीच संवाद है। इस प्रकार अतीत तथा वर्तमान एक दूसरे से संपृक्त है। अतीत की विकासात्मक व्याख्या एक लक्ष्य है, उसे इतिहासकार का दायित्व कहा जा सकता है। प्रोफेसर बटरफील्ड के अनुसार इतिहास के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की मूलभूत श्रेणियां हैं गतिहीनता और गति। इतिहासकार इतिहास में गति को पहचानने की कोशिश करता है। वह इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि जड़ता तथा परिवर्तन में कौन प्रबल और प्रभावी है। इतिहास में परिवर्तन निश्चित और पूर्ण है, जड़ता आत्मगत और सापेक्ष तत्व होता है। यह परंपरागत अवधारणा है कि इतिहास में परिवर्तन की व्याख्या किसी स्थिर तथा अपरिवर्तनीय मानदंड के अनुसार करनी चाहिए। वर्तमान सदैव इतिहासकार को अतीत की व्याख्या के लिए बाध्य प्रेरित तथा प्रोत्साहित करता है। वर्तमान का अभिप्राय समसामयिक सामाजिक आवश्यकता है। लेनपूल के अनुसार इतिहास मध्ययुगीन भारतीय शासकों, दरबार तथा विजय का इतिहास है। जब ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास लिखा तो ब्रिटिश राजतंत्र के परिवेश में संभवतः ऐसे ही इतिहास में सामाजिक आवश्यकता की अनुभूति की थी। आज 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जनसामान्य का इतिहास सामाजिक उपयोगिता है, इसलिए भारतीय इतिहासकारों की अभिरुचि जनसामान्य के इतिहास में बढ़ती जा रही है। इस प्रकार वर्तमान में अभिरुचि ही इतिहासकार को अतीत की व्याख्या के लिए प्रेरित करती है। प्रोफेसर जेबी म्यूरी का भी मत है कि ऐतिहासिक व्याख्या में अतीत और भविष्य की कल्पना का समन्वय होता है। प्रोफेसर रेनियर ने भी इस मत का समर्थन करते हुए कहा है कि व्याख्या में इतिहासकार अतीत की कल्पना और भविष्य का स्मरण करता है। प्राचीन भारतीय महर्षियों तथा मनीषियों ने वेदों, पुराणों तथा महाकाव्यों की रचना के समय भावी दायित्व का बोध किया था। दायित्व का अभिप्राय वर्तमान तथा भविष्य के विषय में चिंतन होता है, इसलिए पाश्चात्य विद्वान हुइजिंगा ने ऐतिहासिक चिंतन को उद्देश्यवादी कहा है। प्रत्येक इतिहासकार व्याख्या के माध्यम से अतीत की संपदा और परंपराओं को भविष्य के गर्भ में प्रक्षेपित कर सुरक्षित रखता है। भविष्य में रुचि के कारण इतिहासकार अतीत से प्रेम करता है। इतिहासकार ने तो यहाँ तक कहा है कि केवल भविष्य ही इतिहासकार को अतीत की व्याख्या का यंत्र प्रदान कर सकता है। अतीत भविष्य पर प्रकाश डालता है और भविष्य अतीत पर। यह तथ्य एक प्रकार से इतिहास की व्याख्या भी है। इतिहास में पूर्ण अतीत कोई वस्तु नहीं है और वह वर्तमान में कोई चीज नहीं है, क्योंकि संपूर्ण वर्तमान चिंतन आवश्यक रूप से सापेक्ष है। इतिहास के कुछ तत्व भविष्य के गर्भ में होते हैं, जिसे इतिहासकार पढ़ाना चाहता है। ज्यों ज्यों हम इसके समीप पहुंचते हैं, उसका प्रकाश हमारे मार्ग को प्रकाशित कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इतिहास चिंतन की यह प्रक्रिया स्वतः अतीत की व्याख्या का आकार प्रदान करती है। अतीत की घटनाओं को व्यवस्थित कर उसकी व्याख्या करते समय प्रत्येक इतिहासकार एक दायित्व का अनुभव करता है कि वर्तमान की मानवीय ऊर्जा को भविष्य के लिए सुरक्षित करे। राजनीतिक के समाजशास्त्री तथा अर्थशास्त्री सदैव इसी संदर्भ में सोचते तथा कार्य करते हैं। दार्शनिक इतिहासकारों का अटूट विश्वास है कि अतीत की ऐतिहासिक व्याख्या अनवरत संशोधन और विकास की प्रक्रिया से बढ़ती रहेगी। हेगेल ने इतिहास की गति को भविष्य में प्रक्षेपित करने के बजाय वर्तमान में ही समाप्त कर एक भयंकर भूल की थी। उसने अतीत की विकास प्रक्रिया को स्वीकार किया, परंतु भविष्य में इस अनवरत प्रक्रिया की भूमिका को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है। हेगेल के पश्चात अन्य दार्शनिकों ने अतीत और भविष्य की इस प्रक्रिया का संकेत सदैव भविष्य की ओर रहता है। कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत को दृढ़ता से अतीत पर आधारित किया, परंतु वर्तमान में वर्गहीन समाज के उद्देश्य की पूर्ति की कठिनाइयों ने उन्हें भविष्य के विषय में सोचने के लिए विवश कर दिया। वर्गहीन समाज के संघर्ष का अभिप्राय सुखद भविष्य का निर्माण है। भविष्य के विषय में उनका यह दृष्टिकोण इस उद्घोषणा के लिए विवश कर देता है कि भावी विश्व का समाज वर्गहीन होगा, जिसमें शासक की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने वर्गहीन समाज को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्हें अपने पूर्ण सत्य को भविष्य में प्रक्षेपित करना चाहिए। इस प्रकार अतीत, वर्तमान और भविष्य ऐतिहासिक व्याख्या को क्रमबद्धता प्रदान करते हैं। इसमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। कॉलिंगवुड के अनुसार अतीत का अध्ययन वर्तमान में मानवीय क्षमता का ज्ञान प्रदान करता है। वर्तमान तथा भविष्य में रुचि ही इतिहासकार को अतीत से प्रेम करने के लिए बाध्य करती है। अतीत वर्तमान और भविष्य को प्रकाशित करता है तथा वर्तमान और भविष्य का प्रकाश इतिहासकार को अतीत के कोणों के अवलोकन के लिए सक्षम बनाता है। इतिहास की यही वास्तविक व्याख्या है। ऐतिहासिक व्याख्या में अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का संबंध अन्योन्याश्रित है। कारण तथा व्याख्या। ईएच कार का अभिमत है कि इतिहास अध्ययन का अर्थ है कारणों का अध्ययन। कारणों के अध्ययन का अभिप्राय कारणों की व्याख्या है। स्थान तथा समय के संदर्भ में इतिहासकार कारणों की व्याख्या करता है। काल तथा स्थान के परिवेश में यह संभव नहीं है कि सभी इतिहासकार एक कारण को एक स्वर से स्वीकार करें। गतिशील ग्रह तथा उपग्रह का स्वरूप विभिन्न स्थानों तथा समय से विभिन्न रूप में दिखाई देता है। पर्वतीय पर्वतीय उच्च शिखर तथा समुद्र तटीय भाग की विभिन्नता के कारण सूर्य एक समान नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार अतीतकालिक घटनाओं के तथ्य विभिन्न युगों के इतिहासकारों को स्थान तथा काल के संदर्भ में विभिन्न रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण कालीन कारणों की व्याख्या में अधिकांश इतिहासकारों ने यूनान तथा रोमन इतिहास अध्ययन की भूमिका को मान्यता प्रदान की है। गिबन ने रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या में नैतिक पतन को प्रधान कारण स्वीकार किया है, परंतु कार्ल मार्क्स ने पुनर्जागरण तथा रोमन साम्राज्य के पतन में आर्थिक कारणों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। कारणों की व्याख्या का तात्पर्य क्रमबद्धता प्रदान करना होता है। क्रमबद्धता में व्यक्तिगत दृष्टिकोण निर्णायक तत्व होता है। इतिहासकार तथा कारणों का अन्योन्याश्रित संबंध तथ्य तथा इतिहासकार पर्यावरण की भांति होता है। इतिहासकार की व्याख्या कारणों के चयन तथा उनकी क्रमबद्धता को निर्धारित करती है। अपनी व्याख्या में इतिहासकार अतीत के अनुभव का सारतत्व ग्रहण करता है, जो उसे तर्कपूर्ण व्याख्या और अनुसंधान के योग्य लगते हैं। इतिहास एक चयन प्रक्रिया है। यथार्थ न केवल बोधात्मक तथा अनुभव गम्य है, बल्कि कारण परक निर्धारण तत्व है। कार्ल ए पापर के अनुसार व्याख्याओं की संख्या अनेक होती है, परंतु उनमें से कुछ अपनी उर्वरता के लिए विशिष्ट मानी जाती हैं, जो यह सिद्ध करती है कि इतिहासवाद इतना दरिद्र नहीं है। मैनेक के अनुसार इतिहास में कार्य कारण संबंधों की गवेषणा मूल्यों के संबंधों के बिना असंभव है। कारणों की गवेषणा के पीछे मूल्यों की गवेषणा आवश्यक हो जाती है। इसलिए ऐतिहासिक व्याख्या को मूल्य संपृक्त कहा गया है। व्याख्या के दृष्टिकोण डेविड थॉमसन के अनुसार वर्तमान के पूर्णत्व का कारण अतीत का पूर्णत्व होता है। वर्तमान का उद्भव अतीत के गर्भ से हुआ है, अतः अतीत वर्तमान का कारण मात्र होता है। मेंडेलबाम का अभिमत है कि सार्वभौमिक नियमानुसार प्रत्येक घटना के कुछ कारण होते हैं। प्रत्येक इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या में कारणों की गवेषणा करके क्रमबद्धता प्रदान करता है। प्रोफेसर रोसेनफील्ड के अनुसार कारण सिद्धांत का एकमात्र उद्देश्य कारण तथा परिणाम का तर्कयुक्त प्रस्तुतिकरण है। युग चक्रवादी व्याख्या भारतीय तथा यूनानी अवधारणा के अनुसार इतिहास एक निरंतर गतिशील युग चक्र है। कृत त्रेता द्वापर तथा कलयुग इस युग चक्र के भाग है। मनुष्य का सुख तथा दुख इस परियोजना का परिणाम होता है। इसका स्वरूप प्राकृतिक ऋतु नियम के अनुसार है। कारणों की इस व्याख्या ने अनेक इतिहासकारों को अवतारवाद में विकास करने के लिए विवश कर दिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाभ्याम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। अवतारवाद की इस अवधारणा से इतिहास में कारण परिणाम के सिद्धांत की पुष्टि होती है। अनेक भौतिकवादी इतिहासकारों ने साम्राज्य के उत्थान तथा पतन की व्याख्या प्राकृतिक नियम के अनुसार की है। किसी साम्राज्य तथा राजवंश के उत्थान के पश्चात पतन निश्चित है। इस प्रकार इतिहास की अपनी गति है। ऐतिहासिक घटनाएं गति तथा परियोजना के अनुसार परिणाम देती है। मानवीय प्रयास कुछ समय के लिए नियति को टाल सकता है, परंतु अंत में इसे निश्चित होना है। घटनाएं पूर्व निर्धारित परियोजना के अनुसार घटती हैं। ऐतिहासिक अवश्यंभाविता दार्शनिक इतिहासकारों ने ऐतिहासिक घटनाओं में अदृश्य शक्तियों की भूमिका को मान्यता प्रदान की है। एडम स्मिथ की गुप्त हस्त तथा हिगल की बुद्धि की चतुराई की भूमिका ऐतिहासिक घटना के निर्णायक तत्व होते हैं। मनुष्य अपने इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वह अदृश्य शक्ति के अनुसार इतिहास प्रवाह में प्रवाहित होता है। कार्ल मार्क्स का भी विश्वास ऐतिहासिक अनिवार्यता में था। उसने कहा था कि मनुष्य आजीविका के उत्पादन में ऐसे सामाजिक बंधनों में बन जाता है कि न चाहते हुए भी उसे स्वीकार करना पड़ता है। टॉलस्टॉय ने भी इस व्याख्या को मान्यता प्रदान करते हुए कहा है कि मनुष्य अविज्ञान में अपने लिए जीवित रहता है, परंतु सार्वभौमिक ऐतिहासिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक अनजान यंत्र है। प्रोफेसर बटरफील्ड का भी अभिमत है कि ऐतिहासिक घटना में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मानवीय इच्छा के विपरीत इतिहास की गति को प्रवाहित करते हैं। राष्ट्रपति विल्सन ने कहा था कि वे युद्ध में भाग लेना नहीं चाहते हैं,
परंतु उन्हें भय है कि युद्ध की घटनाएं उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए विवश कर देंगी। कारणों की व्याख्या के अंतर्गत इतिहासकार ऐसे तत्वों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार करते हैं। नियतिवाद। नियतिवाद एक विश्वास है कि प्रत्येक घटना के कुछ कारण होते हैं। नियतिवाद इतिहास की ही नहीं अपितु संपूर्ण मानव व्यापार की समस्या है। प्रत्येक इतिहासकार अपनी व्याख्या में मानवीय व्यवहार के कारणों की व्याख्या करता है। अकबर की धार्मिक तथा राजपूत नीति की पृष्ठभूमि में इतिहासकार उन निर्णायक तत्वों की व्याख्या करता है जिन्होंने सम्राट अकबर को उदारवादी व्यवहार के लिए विवश किया था। नियतिवाद अवधारणा के अंतर्गत इतिहासकार मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने के लिए कारणों की व्याख्या करता है। इतिहास में संयोग। इतिहासकार का अभिमत है कि इतिहास कम अथवा अधिक संयोगों का एक अध्याय है। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा का अचानक तीर से घायल हो जाना, 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू का घायल होना, 1567 में चित्तौड़ के घेरे के समय अकबर की बंदूक की गोली से जैमल की अचानक मृत्यु की घटनाओं ने अनेक इतिहासकारों को यह विश्वास करने के लिए बाध्य कर दिया है कि ऐतिहासिक घटना में संयोग की भी निर्णायक भूमिका होती है। एंटोनी का क्लियोपेट्रा के प्रति आकर्षण तथा सैनिक अभियान पर उसके निर्णायक प्रभाव ने अनेक इतिहासकारों की व्याख्या में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। रोमन इतिहासकार पोलीबियस तथा गिबन ने रोमन साम्राज्य के उत्थान में संयोग की भूमिका पर विस्तृत प्रकाश डाला है। प्रोफेसर जेबी ब्यूरी तथा फीसर का विश्वास संयोग की भूमिका में रहा है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि विश्व इतिहास में अगर संयोग के लिए स्थान नहीं होता तो इसका चरित्र ही रहस्यवादी होता। इतिहासकार अपनी ऐतिहासिक व्याख्या में संयोग जैसे तत्व की भी व्याख्या करता है। यह इतिहासकार के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि इसे प्रधान अथवा गौर स्थान दे। परंतु यह नितांत सत्य है कि प्रायः संयोग ने ऐतिहासिक घटना की गति को अचानक नवीन मोड़ दिया है। आर्थिक व्याख्या। अधिकांश इतिहासकारों ने ऐतिहासिक घटनाओं में आर्थिक कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी है। कार्ल मार्क्स प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने प्रत्येक ऐतिहासिक घटना की व्याख्या में आर्थिक कारणों को निर्णायक माना है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत उन्हीं की देन है। रोमन साम्राज्य के उत्थान तथा पतन, यूरोपियन पुनर्जागरण, राष्ट्रीय संगठन एवं राष्ट्रों के बीच संघर्ष में आर्थिक कारण की निर्णायक भूमिका रही है। कार्ल मार्क्स ने तो वैज्ञानिक तथा बौद्धिक क्रांतियों का कारण भी आर्थिक सिद्ध किया है। बर्ट्रेंड रसेल के अनुसार आर्थिक तत्वों में ने इतिहास गति को नवीन दिशा प्रदान की है। गैलीलियो आधुनिक विज्ञान के जन्मदाता है। उनका आधार कोपरनिकस है। कोपरनिकस के पृष्ठभूमि पुनर्जागरण ने तैयार की है। पुनर्जागरण की भूमिका में कुस्तुनतुनिया का पतन तथा कुस्तुनतुनिया के पतन का मार्ग तुर्कों के प्रवासन ने तैयार किया और तुर्कों के प्रवासन का प्रमुख कारण आर्थिक रहा है। इस प्रकार आर्थिक तत्वों ने इतिहास की गति को सदैव मोड़ दिया है। इसी प्रकार मंगोलों की बर्बरता तथा उन्हें लड़ाकू जाति बनाने में आर्थिक कारण प्रधान है। किसी शासक की आर्थिक संपन्नता उसे साम्राज्यवादी बनाती है। समाज में चोरी, डकैती, हत्या आदि अपराध के पीछे आर्थिक कारण निर्णायक होते हैं। 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति, 1917 में रूसी राज्य क्रांति तथा प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध का नेतृत्व आर्थिक कारणों ने किया था। अतः किसी घटना तथा मानवीय कार्यों के विश्लेषण में भौतिकवादी इतिहासकार आर्थिक कारण की गवेषणा करता है। इतिहासकार का यह प्रयास उसके द्वारा अतीत की आर्थिक व्याख्या है। मूल्य संपृक्त व्याख्या। इतिहासकार की व्याख्या सदैव उद्देश्य परक एवं मूल्य संपृक्त होती है। इतिहास में व्याख्या के साथ मूल्यों के आधार पर गुण दोष विवेचन संपृक्त रहता है। मैनेक ने लिखा है कि इतिहास में कार्यकारण संबंधों की गवेषणा मूल्यों के संदर्भ के बिना असंभव है। कारणों की गवेषणा के पीछे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में मूल्यों की गवेषणा आवश्यक होती है। प्रोफेसर वाल्स का भी अभिमत है कि कारणों की व्याख्या मूल्य संपृक्त होती है। प्रत्येक इतिहासकार समसामयिक मूल्यों के आधार पर इतिहास की व्याख्या करता है। गिबन ने रोमन साम्राज्य के पतन का कारण नैतिक पतन सिद्ध किया है, परंतु कार्ल मार्क्स ने सामाजिक मूल्य के संदर्भ में आर्थिक कारणों को प्रमुख माना है। किसी युग में दास प्रथा, जाति प्रथा, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में अपनी उपादेयता रही है, परंतु वर्तमान सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में उन्हें अभिशाप समझा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक युग का इतिहासकार समसामयिक सामाजिक मूल्यों के आधार पर व्याख्या करता है। अलाउद्दीन खिलजी तथा जलालुद्दीन खिलजी की मोहम्मद तुगलक द्वारा गियासुद्दीन तुगलक की हत्या वर्तमान सामाजिक मूल्य के अनुसार निंदनीय है, परंतु समसामयिक दृष्टिकोण के सर्वथा उचित है। शेरशाह द्वारा चौसा के युद्ध में हुमायूं के साथ विश्वासघात, पुनर्मल की सुरक्षा का आश्वासन देने के पश्चात उस पर आक्रमण, मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ छल कपट की नीति की आलोचना इतिहासकारों ने की है, परंतु मध्ययुगीन समाज के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। जहां मैकियावेलियन दृष्टिकोण से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी अनैतिक तथा नैतिक साधनों का उपयोग का प्रयोग उचित था, परंतु इन कारणों की व्याख्या प्रत्येक युग का इतिहासकार समसामयिक सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में करता है, क्योंकि वह साहित्यकार की भांति अपने युग का प्रतिनिधि होता है। अतः ऐतिहासिक व्याख्या का मूल्य संपृक्त होना स्वाभाविक है, परंतु प्रोफेसर वॉल्स ने स्वीकार किया है कि इतिहासकार की मूल्य संपृक्त व्याख्या का आधार साक्ष्य होना चाहिए। तथ्य तथा व्याख्या, तथ्य ही इतिहासकार की व्याख्या के आधार होते हैं। तथ्य तथा इतिहासकार का संबंध घनिष्ठ एवं अन्योन्याश्रित होता है। तथ्य के अभाव में इतिहासकार का कोई महत्व नहीं है, और इतिहासकार के अभाव में तथ्य निष्प्राण तथा मृत प्राय होते हैं। इन दोनों का पारस्परिक संबंध इतना घनिष्ठ है जितना भौगोलिक स्थिति और मनुष्य का। अतीत एक अगाध समुद्र है, और इतिहासकार इस अगाध समुद्र से तथ्यों का चयन करके उनकी व्याख्या करता है। इसलिए टेलकार पार्सन ने ऐतिहासिक व्याख्या को चयन प्रक्रिया की संज्ञा दी है। इसी को व्याख्या का बोधात्मक तथा अनुभव परक निर्धारण कहा जा सकता है। इतिहासकार अतीत के महासमुद्र से कतिपय ऐतिहासिक तथ्यों का चयन करता है जिसका ऐतिहासिक महत्व होता है, तत्पश्चात उन्हें श्रृंखला बद्ध करके व्याख्या के द्वारा तत्पश्चात उन्हें श्रृंखलाबद्ध करके व्याख्या के द्वारा इतिहास में अतीत का निर्माण करता है। एल पॉल ने तथ्यों की चयन प्रक्रिया के संबंध में लिखा है कि वह इतिहासकार अलौकिक तथ्यों को कूड़े के ढेर में से चुनता है और एक एक करके सामने रखता है। संबंध अलौकिक तथ्यों को क्रम देता है तथा असंबंध तथ्यों को किनारे फेंकता चलता है, जब तक वह ज्ञान की एक तार्किक युक्तियुक्त रजाई सिलकर तैयार नहीं कर लेता। एल पॉल के इस कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि इतिहासकार ऐतिहासिक महत्व के ही तथ्यों का चयन करके उन्हें अपनी ऐतिहासिक व्याख्या में स्थान देता है। 19वीं सदी के इतिहासकारों के बीच तथ्य तथा व्याख्या ने एक गंभीर विवाद का स्वरूप ग्रहण कर लिया था कि इन दोनों में से तथ्य प्रधान है अथवा व्याख्या। कुछ इतिहासकारों का दृष्टिकोण है कि इतिहास में तथ्य प्रधान होता है, किंतु उसकी व्याख्या की प्रधानता रहती है। इतिहास तथ्यों का संकलन मात्र नहीं बल्कि इतिहासकार की व्याख्या द्वारा पुनर्निर्मित होता है। इतिहास में तथ्य कुछ नहीं होता, व्याख्या सब कुछ होती है। कार्ल बेकर का अभिमत है कि इतिहासकार के लिए तथ्यों को कोई अस्तित्व नहीं होता है जब तक उसकी व्याख्या न हो। लॉर्ड एक्टन ने अपने गुरु प्रोफेसर डालिंजर से कहा था कि वे अधूरे तथ्यों के आधार पर इतिहास नहीं लिखना चाहते और उनके लिए तथ्य सदैव अधूरे रहते हैं। निःसंदेह तथ्य इतिहास की रीढ़ होते हैं, परंतु व्याख्या के अभाव में तथ्यों का संकलन इतिहास को विश्वकोश मात्र बना देगा। E.H. कार ने तो स्पष्ट लिखा है कि तथ्य इतिहास के लिए नहीं अपितु इतिहासकार के लिए कच्चे माल जैसा होता है। अधिकांश इतिहासकारों का विश्वास है कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते बल्कि व्याख्या के माध्यम से इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। तथ्यों को बुलवाने का अभिप्राय उनकी व्याख्या करना है। इसलिए सर जॉर्ज क्लार्क ने कहा है कि इतिहास तथ्यों की गुठली के चारों ओर विवादास्पद व्याख्या को अलग करना अधिक महत्वपूर्ण माना है। सीपी स्कॉट ने तथ्य को पवित्र माना है, परंतु मंतव्य स्वतंत्र है। पूर्वग्रही विचार और व्याख्या, ऐतिहासिक तथ्यों को चयन प्रक्रिया ने अनेक इतिहासकारों की पूर्वग्रही बना दिया है। प्राय इतिहासकार अपने पूर्वग्रही दृष्टिकोण से तथ्यों का चयन करता है। इस चयन प्रक्रिया में उसकी व्यक्तिगत रुचि की प्रधानता रहती है। अतीतकालिक घटना के सभी तथ्यों का संकलन उसके लिए संभव नहीं है। तथ्य प्रधान इतिहास कोई इतिहास नहीं होता, इतिहास में व्याख्या की प्रधानता रहती है, परंतु व्याख्या का अभिप्राय तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपने मनोनुकूल बोलने के लिए विवश करना उचित नहीं है। रंके ने तो स्पष्ट कहा है कि तथ्यों का संकलन करो, उसके निहित अर्थ को स्पष्ट करने में ईश्वर सहायक होगा। बटरफील्ड का भी अभिमत है कि तथ्यों का संकलन करो, तत्पश्चात कारणों को देखो। मोहम्मद तुगलक के संबंध में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद तथा डॉक्टर आगा मेहदी हुसैन ने तथ्यों का संकलन पूर्वग्रही दृष्टिकोण से किया है। इसी प्रकार मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकालीन घटनाओं का विवरण सर यदुनाथ सरकार तथा फारूकी ने पूर्वग्रह दृष्टिकोण से किया है। मनोनुकूल तथ्यों का चयन तथा व्यक्तिगत अभिरुचि के अनुसार उनकी व्याख्या की है। इस प्रकार चयन प्रक्रिया के अधिकार ने उन्हें मनोनुकूल व्याख्या के लिए प्रोत्साहित किया है। इतिहासकार कैसे तथ्यों की व्याख्या करते हैं? इतिहास में दो प्रकार के तथ्य होते हैं, कठोर तथा कोमल। इतिहासकार कठोर तथ्यों को नहीं बदल सकता, केवल कोमल तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर व्याख्या का अधिकार उसे है। जैसे 1526 में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध, इसमें 1526 पानीपत, बाबर तथा इब्राहिम लोदी कठोर तथ्य है। इतिहासकार अपने इच्छानुसार इन तथ्यों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। विजय तथा पराजय के कारण कोमल तथ्य है, इनकी व्याख्या में इतिहासकार की व्यक्तिगत अभिरुचि प्रधान हो सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि इतिहासकार मात्र कोमल तथ्यों की ही व्याख्या कर सकता है। वस्तुनिष्ठ व्याख्या की अपेक्षा, इतिहास के तथ्य शुद्ध वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं, क्योंकि तथ्य इतिहास की वस्तु तभी बनते हैं जब चयन प्रक्रिया के द्वारा इतिहासकार उसे इतिहास में स्थान देता है। E.H. कार ने स्पष्ट लिखा है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठा नहीं हो सकती, केवल संबंधों की वस्तुनिष्ठा होती है। ऐतिहासिक व्याख्या की वस्तुनिष्ठा में इतिहासकार का धर्म, जाति, संस्कार तथा क्षेत्रीयता बाधक तत्व होते हैं, परंतु इतिहास का अपना अनुशासन है। प्रत्येक इतिहासकार को जातीयता, धार्मिकता तथा क्षेत्रीयता के स्तर से ऊपर उठकर इतिहास अनुशासन के अनुसार इतिहास लेखन करना चाहिए। नेबू ने फ्रांस का इतिहास लिखकर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया। लॉर्ड एक्टन ने भी तथ्यों को बिना नमक मिर्च मिलाकर उसके यथावत प्रस्तुतिकरण का प्रयास किया है। वे प्रायः कहा करते थे कि हमारा वाटरलू ऐसा होगा जो जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेज तथा डेनमार्क के सभी लोगों के लिए सामान्य रूप से ग्राह्य होगा। इससे बढ़कर ऐतिहासिक व्याख्या की वस्तुनिष्ठा का उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलेगा। इतिहास में यथातथ्य होना एक आवश्यक दायित्व है, परंतु गुण नहीं। फिर भी वस्तुनिष्ठ व्याख्या इतिहासकार का दायित्व होना चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य समाज के एक वर्ग को संतुष्ट करना नहीं अपितु तो संपूर्ण समाज के लिए इतिहास लिखना है। वैज्ञानिक की भांति उसके इतिहास का स्वरूप सार्वभौमिक तथा सर्वयुगीन होना चाहिए। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा का कोई सिद्धांत नहीं है, उसके लिए अभ्यास तथा प्रयास की आवश्यकता है। यह इतिहासकार के मानसिक चिंतन पर निर्भर करता है। लॉर्ड एल्टन तथा नेबू की वस्तुनिष्ठा संबंधी विचार समस्त इतिहास जगत के लिए सर्वोच्च आदर्श है। नेबूर के संबंध में निकोलो वियस ने लिखा है कि उनकी आत्मा एक मधुमक्खी की भांति है, क्योंकि उन्होंने अपने वैभवपूर्ण युग के विषाक्त तत्वों का परित्याग कर मधुर रस मात्र का ही संग्रह किया है। ऐतिहासिक व्याख्या के माध्यम से उन्होंने समसामयिक समाज को मधुपान मात्र कराने का यथाशक्ति प्रयास किया। उनका यह आदर्श सभी युग के इतिहासकारों के लिए व्याख्या का पथ प्रदर्शक है। यह तभी संभव है जब इतिहासकार तथ्यों को स्वयं बोलने का अवसर देंगे। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मनोनुकूल निष्कर्ष प्रस्तुत करना इतिहासकार का दोष है। समीक्षा, ऐतिहासिक व्याख्या का अभिप्राय इतिहासकार द्वारा अतीतकालिक घटना संबंधी कारणों तथा तथ्यों की व्याख्या है। वह अपनी व्याख्या में चयन प्रक्रिया के द्वारा उन्हें क्रमबद्धता प्रदान करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से वह अनावश्यक तथ्यों का परित्याग तथा आवश्यक तथ्यों का चयन करता है। तथ्यों को यथावत रखने का विरोध कॉलिंगवुड ने किया है और इसे कैची तथा गोद शैली की संज्ञा दी है। उनके अनुसार व्याख्या विहीन इतिहास का कोई महत्व नहीं होता है। कॉलिंगवुड ने स्पष्ट किया है कि वैज्ञानिक व्याख्या का तात्पर्य वर्तमान के संदर्भ में सारयुक्त निष्कर्ष का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। ऐतिहासिक व्याख्या में अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का घनिष्ठ संबंध है। E.H. कार के अनुसार वस्तुतः इतिहास, इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया एवं वर्तमान तथा अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। हीगल की भांति संभवतः कार ने भी वर्तमान में इतिहास के अवसान का अनुभव किया है। वास्तविकता तो यह है कि इतिहासकार की अभिरुचि समान रूप से अतीत, वर्तमान तथा भविष्य में रहती है। वर्तमान तथा भविष्य में रुचि की इतिहासकार को व्याख्या के लिए प्रेरित करती है। इसलिए चार्ल्स स्नो ने रदरफोर्ड के विषय में लिखा है कि वैज्ञानिकों की भांति इतिहासकारों की अस्थियों में भविष्य समाहित रहता है। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद तथा वर्गहीन समाज के उद्देश्यों को वर्तमान में न देखकर भविष्य के विषय में पूर्ण आश्वस्त थे। स्पेंगलर तथा टैनबी ने अपनी ऐतिहासिक व्याख्या में भविष्य का संकेत किया है। व्याख्या में इतिहासकार क्यों का प्रश्न करता है तो उसका अभिप्राय किधर से होता है। किधर की समस्या भविष्य का दिशा निर्देशन है। अंत में हम कह सकते हैं कि इतिहासकार अपनी व्याख्या के माध्यम से अतीत तथा वर्तमान के बीच एक ऐसे सेतु का निर्माण करता है जो भविष्य का सुस्पष्ट मार्गदर्शन तथा दिशा निर्देशन करता है। अतः व्याख्या अतीत, वर्तमान तथा भविष्य को संपृक्त करने का एक सेतु बन रहा है। प्रत्येक व्याख्या अपने समय तथा स्थान के संदर्भ में सही है। यदि कोई इतिहासकार अपने पूर्ववर्ती इतिहासकार के मंतव्य का खंडन करता है तो वह अपनी व्याख्या में यह कह सकता है कि पूर्ववर्ती इतिहासकार का निष्कर्ष पक्षपात पूर्ण, भ्रामक तथा अपूर्ण है। यही नहीं, वह इस व्याख्या का अभिप्राय स्वांतः सुखाय के साथ समाज सुखाय होना चाहिए। भविष्य के प्रति दायित्व की भावना उसे सदैव सुखद भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करेगी। इतिहासकार को अगाध अतीत से मधु तत्वों मात्र का संग्रह करना चाहिए जो समसामयिक तथा भावी समाज को मधुपान करा सके। इतिहासकार की व्याख्या में ही वर्तमान तथा भावी समाज का कल्याण निहित है।